أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین اس ساری مجلس کا حصہ لینے والا اور مجھے دینے والا بنائے. قرآن کی محفل حقیقت میں وہ محفل ہے کہ جہاں ایمان والوں کے دل لگتے ہیں. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ جن کو دیکھ کر رب یاد آ جائے. اللہ کرے کہ ہم وہی لوگ بن جائیں. ہمارے پاس اتنا مختصر سا وقت ہے زندگی میں. اگر ہمیں اپنے وقت کی قدر پتہ چل جائے تو ہم لمحوں کو نچوڑیں اور جو لمحے اس وقت نیکیوں کی طلب میں گزر جائیں کل قیامت کے دن یہی اصل میں ہماری اصل کمائی ہوگی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد ولا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ولا علی ابراہیم انک حمید مجید. وہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے, یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. اور آج کا ٹاپک ہمارا پی کے ٹرپ 22-23 کا ہی ایک لیکچر ہے, جس میں ہمارا تھیم کیا ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان. اصل میں یہ ہے قرآن کا مطلوب انسان کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. دنیا میں مختلف چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کی چیزوں سے یادیں آتی ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو اپنے ساتھ ذہنی طور پہ لے کے چلتی ہوں. کبھی آپ نے کسی دوپٹے کو دیکھا ہو اور کہا ہو یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے, اس کو دیکھ کر مجھے ماں یاد آتی ہے. یہ میری نانی کا زیور ہے, اس کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے میری نانی یاد آتی ہے. ہے کچھ ذہن میں؟ کبھی کبھی ہم وہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے جہاں ہمارا بچپن اور جوانی گزری ہو یا جہاں ہمارا کوئی تعلق ہو. تو ان ساری باتوں کو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا نا, ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل ہوتا ہے. کچھ گلیاں, کچھ شہر, وہاں سے انسان جب گزرتا ہے نا تو وہ حال سے زیادہ ماضی میں ہوتا ہے. فیصل آباد بھی ایک ایسا ہی شہر ہے میرے لیے جہاں سے آج اللہ تعالیٰ نے اس بات کا موقع دیا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ انسان کی نفسیات کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی نشانیوں میں ڈھونڈتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بہت سی نشانیاں دی ہیں. یہ جو 6000 سے زائد آیتیں ہیں نا, 6000+ آیات ورسز, یہ بھی نشانی ہے. اس کو انگلش میں آپ سائنس کہہ لیں, اردو میں نشانی, عربی میں آیت کہہ لیں, نوشق میں اس کو شلت کہتے ہیں. آپ سب نے اگر اس مسجد میں آنا تھا تو آپ نشانیاں دیکھتے ہوئے آئے نا. اب یہاں مڑنا ہے, اب یہ راستہ ہے, اب یہ گلی ہے, اب یہ نکر ہے. پہلے دور میں لوگ زبانی دیکھتے تھے, آج اس کا الحمدللہ بڑا ایڈوانس طریقہ مل چکا ہے. بالکل اسی طرح سے قرآن کی ہر نشانی, قرآن کی ہر آیت اللہ کا بتا دیتی ہے. ذرا سا محسوس تو کریں آپ, جنت کا ایڈریس ہے قرآن کی ہر آیت. کیوں کہا گیا کہ قیامت کے دن جس نے قرآن پڑھا ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ اقرا ورقا ورتل القرآن. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. حافظ قرآن کے معاملے میں عموماً لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ اس کے درجے بلند کیے جائیں گے قیامت کے دن اوپر سے اوپر. بالکل اس کا ذہن میں لائیے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے یہ چیز رکھ دی کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس ساری کوشش کو جو اس وقت ہم کر رہے ہیں, جس کے ساتھ آج میرا آپ کا تعلق ہے اس وقت, اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہے تو اب اللہ تو نہیں دیکھتا. تو اللہ کو کیسے دیکھو؟ دو طرح سے. ایک تو قرآن کی آیتیں جو میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر کر دیا ہے. قرآن کی آیتوں ان کو پڑھنے کے بعد اگر اللہ کی معرفت نہیں ملی تو پھر آپ کا جی پی ایس رونگ ہے, پھر آپ نے ایڈریس ہی غلط ڈالا. قرآن پڑھنے کا مقصد یا ڈیسٹینیشن آج کی زبان میں کیا ہے؟ कि आपको रब की मार्फत मिल जाए, ये दुनिया में होगा, और आखिरत में क्या, जन्नत मिल जाए। जन्नत ही जन्नत में जब जाएंगे तो पहला जुमला क्या होगा उनकी ज़ुबान पे? सूरत अल अराफ में आपने आयतें पढ़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना, ये अल्लाह की ज़ात है जिसने हमें इधर आने तक का रास्ता दिया, हम तो नहीं थे पाने वाले अगर अल्लाह हमें रास्ता ना देता। तो आप सब कुरान की महफिल में हैं माशाल्लाह, आप लोगों ने किसी भी दर्जे का कुरान पाक ही पढ़ा है, कुरान पाक के साथ आपका गहरा ताल्लुक हुआ है। तो आप आज इस पूरे लेक्चर के दौरान ये दो बातें समझेंगे, और उनमें से एक बात क्या है कि क्या मैं इस कुरान को पढ़कर अल्लाह को पा गई हूँ, क्योंकि जो अल्लाह को पा जाएगा वो खुद को भी पा लेगा। अल्लाह ताला ने अपनी मार्फत की तलब आपकी मेरी ज़िंदगी में, हमारे दिल में, हमारे जिस्म में, हमारे खमीर में रखी है। जब आप कुरान पढ़ जाए तो आप तो रब को पा लें, ये गोल है आपका। अल्लाह ने पूरे कुरान में बड़े खूबसूरत पैकेजेस दिए हैं। सूरत बकरा से शुरू हो जाता है ना मामला, बल्कि अगर सूरह फातिहा से कह दूँ तो सिरातल्लज़ीना अनमत अलैहिम, हम दिन रात एक दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उनका रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किए। तो क्या पता चला कि इनाम जिन पर होते हैं वो अल्लाह के प्यारे होते हैं। सूरत बकरा खोल लीजिए, पहला ही रुकू है, तो अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब व युकीमून सलात से लेके व बिल आखिरति हुम युकीनून, है ना, ये भी एक पैकेज है। ये छह सिफात अपने अंदर पैदा कर लोगे तो तुम्हें इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब सवाल ये है कि आप कुरान पढ़ते गए आगे से आगे बढ़ते गए, और आपको अपने रब की मार्फत मिलती गई, आपने उसको पा भी लिया, लेकिन दूसरे जो आपके इर्द गिर्द है उनको रब कैसे मिलेगा? अमूमन कुरान पाक पढ़ने के बाद दिल में एक तड़प और एक तलब होती है। मैं तो सारा वक्त लोगों की यही फीलिंग सुनती रहती हूँ, उनकी बातें बातें, और वो क्या होती हैं कि अब दूसरों का क्या करें, पहले अपनी फिक्र थी, फिर बच्चों की हुई, शौहर की लगी, भाई बहनों की, यानी वो कहते हैं ना कि दर्द हो सवा होता है, ये दर्द कम नहीं होता। हिदायत की तलब लग जाना ये कभी ना मिल जाने ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। इंसान सबसे पहले अपने बारे में परेशान होता है, अल्लाह अल्लाह करके अपना नफ्स मोटा जो है वो दबता है, क्योंकि वमा उबरी नफ्स इन्ना नफ्स लम्मारा तुम बिस्सू, नफ्स तो अपनी ज़ात के साथ बुराई का हुक्म देता है। सुबह उठना मुश्किल लगता है, फिर आदत डालता है, फजर की नमाज मुश्किल लगती है, फिर उसको पढ़ता है, फिर बात बात पे अना आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, शोहर की बात पे गुस्सा आता है, ससुराल के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, ये नहीं वो नहीं, दिस एंड दैट, अल्लाह अल्लाह करके वो कहते हैं ना कि ये नफ्स का बुत टूटता है। जब ये नफ्स का बुत टूटता है ना हमारा, तो फिर उसके बाद हमें ज़रा फिक्र और लगती है, और वो क्या है कि अब घर वाले, बल्कि घर वाली या घर वाला, बच्चे, और चलते चलते फिर इंसान पूरी दुनिया को, ग्लोब को अल्लाह वाला देखना चाहता है। ये फितरत है, इंसान जब खुद बदलता है तो उसका दिल करता है कि उसके प्यारे भी बदले। आपका भी ऐसे दिल करता है, क्योंकि दूसरों की हिदायत की फिक्र ना होना इस बात की दलील है कि हमारी अपनी हिदायत भी पूरी नहीं है। तो सवाल ये है कि जब हम कुरान पढ़ जाते हैं, और जैसा कि आज आप सब मुझे बताया गया कि कुरान पूरा कर रहे हैं और कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब सवाल ये है कि इस कुरान ने आपको क्या दिया? क्या इस कुरान को पढ़कर आप ऐसे बने कि आपको देखकर अल्लाह याद आ जाए? आप सवाल करेंगे कि ये क्या होता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस आपके साथ आज शेयर करूंगी। सही हदीस लिया करें, किसी की बात को ले लेना कोई मुश्किल बात नहीं लगती, लेकिन हमेशा अपने सुनने सुनाने में वो बातें रखनी चाहिए, वो रिवायात के जिसकी ऑथेंटिसिटी पे 100% यकीन हो। इसी तरह की एक हदीस है सिलसिला तो सहीहा की, यानी आज के दौर में नासिरुद्दीन अल्बानी साहब ने इस हदीस को सही करार दिया, और 3421 है। अगर आप चाहें तो उनका नंबर ये ले लें, किताब में से जाकर उस नंबर की हदीस को खुद अरबिक टेक्स्ट के साथ पढ़ें। आपको मैं सिर्फ यहाँ उसका खुलासा दूंगी, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس کی یہ آیت ہے کہ خوب جان لو بے شک اللہ کے اولیاء پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ یاد آ جاتا ہے جی، تو سوال کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے؟ اسی بات کو جو میں نے شروع میں رکھی تھی ذہن میں رکھیے گا کہ انسان اپنی صحبت سے بہت متاثر ہوتا ہے، ماحول سے بہت اثر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت صالحین کا بہت پیارا تذکرہ کیا، حدیث آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، کچھ میں بھی آج آپ کو کوٹ کر دوں گی۔ لیکن آپ نے جو قرآن پڑھا ہے، آپ کی صحبت کس کے ساتھ ہوئی؟ ایک تو آپ کی قرآن کے ساتھ تھی، اگر آپ نے باقاعدہ قرآن کھول کر پڑھا، حدیثیں پڑھی ہوں گی، حدیث کے ساتھ صحبت ہوگی۔ جس نے بھی پڑھا، جو پڑھا، مجھے اندازہ نہیں ہے آپ لوگوں نے کیا پڑھا، لیکن آپ کا بہت سارا وقت قرآن کے ساتھ گزرا۔ پھر دوسرا یہ آپ کے ساتھ والوں کے ساتھ تعلق رہا نا، لائک مائنڈیڈ لوگ جب ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا بہت ہی اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ تو آپ اپنا وہ وقت یاد کیجئے جب آپ قرآن سے نہیں جڑی تھیں، اس میں اور آج میں کچھ فرق دکھتا ہے؟ بس وہ فرق نوٹ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ بدلتے جائیں گے۔ شیخ سعدی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑی معروف کتاب ہے ان کی، گلستان سعدی، فارسی کی کتاب ہے۔ تو اس میں کہاوت ہے، یعنی یہ کوئی حقیقی باتیں نہیں ہیں، ان کی وزڈم ہے، جیسے وزڈم موتی اقوال زری ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں حمام میں تھا تو میرے دوست نے مجھے خوشبو والی مٹی لا کے دی۔ پہلے دور میں لوگ مٹی سے طہارت کرتے تھے، جیسے آج صابن اور دوسری چیزوں سے کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سونگھا تو اس مٹی میں خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے اپنی زبان میں اس مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا امبر؟ مشک یا امبر دو خوشبوؤں کے نام ہیں، کیونکہ تیری تو خوشبو اتنی ہے کہ میں تو مست ہو رہا ہوں، مجھے تیری خوشبو بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ تو مٹی میں سے آواز آئی۔ اب یہ کیسے آئی؟ یہ زبان حال کی ہے، زبان قال نہیں ہے۔ اس مٹی نے جو کہا ہوگا، جیسے کہا ہوگا، آپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے معنی پہ غور کریں۔ انہوں نے کہا، مٹی کہنے لگی، یہ جملہ اب آپ نے سننا ہے، کہنے لگی میں تو مٹی ہی ہوں مگر ایک عرصے تک پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں جو میری ہم نشین تھی، تو اس پھولوں کا اثر میرے اندر آ گیا تو آ گیا۔ بس یہ ہے بات، مٹی مٹی ہوتی ہے، پھولوں کے ساتھ رکھی رکھے تو اس میں خوشبو آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ دوسرے کا اثر بہت جلد قبول کرتا ہے۔ جب یہ کسی کے پاس آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے نا، تو اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کی سیرت، اس کا کردار، اخلاق، گفتار، وہ بات کیسے کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے، ایسی جگہوں پہ مت بیٹھیں کہ جہاں کفر ہے، شرک ہے۔ قرآن دو تین جگہ پہ اس بات کو ہمارے لیے بڑے کلیئرٹی سے کھولتا ہے کہ مت بیٹھو ایسی جگہوں پہ جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، مت بیٹھو ایسی جگہ پہ جہاں لوگ دین کا استحصاء کر رہے ہوں اور جہاں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہوں، کیونکہ آہستہ آہستہ پھر انسان کی طبیعت پہ اس کا اثر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اونچی بولنے والوں کے گھروں کے بچے بھی اونچی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، نرمی سے بات کرنے والوں کا بچہ بھی نرمی سے بات کرتا ہے۔ حالانکہ بچے کو کون سکھا سکتا ہے، وہ ماحول سے سیکھتا ہے، سنتا ہے۔ تو اچھے انسان، قرآن کی صحبت میں بیٹھے ہوئے انسان، ان کے ساتھ ملنے سے، بیٹھنے سے انسان کے اندر اچھائی کی خوبی آتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے، آپ دیکھیں سب سے بڑی بات، دنیا میں سب سے زیادہ اچھی صحبت کن کی ہو سکتی ہے؟ انبیاء کرام کی۔ صحابہ کرام کو صحابی کا لقب کیوں ملا؟ ابو بکر صدیق کیسے بنے؟ عمر فاروق کیسے بنے؟ علی رضی اللہ عنہ حیدر کرار کیسے بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ جیسے وہ را مٹیریل آتا ہے نا، ہیرا اپنی اصل شکل میں کالے رنگ کا کاربن ہوتا ہے، کوئلہ، لیکن کچھ عرصہ پریشر میں رہنے کے بعد اس کے اندر چینجز آتی ہیں اور اس کے بعد جوہری اس کو گھڑتا ہے۔ और वो डायमंड बनता है और उसके कट्स में उसकी चमक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को अस्हाबे रसूल का लक़ब क्यों मिला, वो सहाबी क्यों बने, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु क्यों बने, इसलिए कि सोहबत रसूल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह से बोल के बहुत कम सिखाया है, आपके किरदार, आपके गुफ्तार और आपकी तकरीर, तकरीर वो नहीं जो हम अमूमन माइक पकड़ के करते हैं, तकरीर का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वो किस्म कि जब किसी के सामने आपने कोई ऐसी बात या किसी को ऐसा काम करते देखा और उसको रोका नहीं, तो ये हदीस बन गई कि ये बात जायज़ है। आपकी खामोशी को तकरीर कहते हैं, हमारे तो गला फाड़ने को तकरीर कहते हैं ना, अल्लाह के नबी की खामोशी तकरीर थी। जो माएँ बैठी हैं उनको बच्चों की तरबियत का भी एक नुक्ता दे जाऊँ कि चीखने से, चिल्लाने से, शोर मचाने से बच्चे नहीं बदलते, नहीं सीखेंगे, ढीठ हो जाएंगे, उनको आदत हो जाती है बातें सुनने की। नतीजा क्या निकलता है कि फिर वो बिल्कुल अच्छी बात सुनते हैं, फिर ऐसा बात का असर ही नहीं होता। और जो जो आप अपनी आवाज़ ऊंची करते जाएंगे, एक दिन फिर ऐसा होगा उसका भी असर नहीं होगा, फिर ऐसा ऐसा दूसरी तरफ करना पड़ेगा। तो आहिस्ता बोलिए, वो बारिश जो आहिस्ता आहिस्ता गिरती है ना, रिम झिम वो ज़मीन में जाती है और उससे जरखेज़ी आती है। रिम झिम जो होती है ना हल्की बारिश, वो ज़मीन में जाती है, बीज में घुसती है, फिर बीज के अंदर छुपा हुआ जो पोटेंशियल है ना वो फूटता है तो पौधा बनता है। और अगर कभी कोई बीज डाले और ऊपर से तेज़ बारिश हो ना, सब जरखेज मिट्टी बह जाती है। ये जो हम बहुत तेज़ियों से और बहुत जल्दियों में बातें करते हैं ना और बोलते हैं, ये अच्छा नहीं करते। हमने बहुत सारे लोगों को डीट कर दिया है, और मैं कहती हूँ हम माएँ होने के नाते बच्चों को, बीवियाँ होने के नाते शोहरों को, बहनें होने के नाते बहन भाइयों को, और जो भी है हमारे इर्द गिर्द या दोस्तों को, हर वक्त कहती हूँ, सब वक्त कहती हूँ, थक गई हूँ कह के, ये है वो है, ये गलत करते हैं, असर नहीं होगा। आप कोई भी चीज़ जब पहली दफ़ा लेते हैं उसका टेस्ट क्या खूबसूरत होता है, फिर दोबारा खाएंगे तो इट्स ओके, तीसरी दफ़ा वो ठीक लगेगा, वो जो फर्स्ट टेस्ट है ना, कुरान पढ़ते हुए, कुरान को समझते हुए, आप में से जिन्होंने पहली दफ़ा कुरान पढ़ा वो तो बदल गए होंगे, और अगर अब नहीं बदले तो बड़े ख़तरे में हैं आप। देखिए कि कुरान के साथ जब ताल्लुक़ जुड़ते हैं ना, तो ये जहन में रखिएगा कि पिछले रंग होते हैं हमारे ऊपर। मसलन कुछ लोग शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मज़हबी बामल घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, बचपन से उनको अपने कपड़ों का फ़िक्र होता है, अच्छे सही पहने, अपनी नमाजों की फ़िक्र है, रोज़े नहीं छूटते उनके। जब वो कुरान पढ़ते हैं ना तो भी तब्दीली आती है, क्योंकि शौरी कुरान, बाशौर हो के कुरान को सुनना समझना, ये जद्दी पुश्ती ख़ानदानी कुरान के वालों से ताल्लुक़ रखने से भी ज़्यादा फ़ायदा लाता है। लेकिन एक वो बच्ची आप में से हो सकता है कि कोई बेटी को, बच्ची को, बहन, जिसको भी अल्लाह ने कुरान सुनवाया होगा, वो पिछली ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ कर चुकी, कुछ कुरान पढ़ने से पहले के हालात ऐसे थे कि आज जिक्र भी करें तो दिल कांप जाए। अब हुआ क्या कि इसको आप मिसाल से लीजिए कि एक कपड़ा है जिस पे पहले से एक रंग चढ़ा हुआ है, अब इसके ऊपर अगर आपने कोई दूसरा रंग चढ़ाना हो, अव्वल तो चढ़ेगा ही नहीं, दूसरी बात है कोशिश भी करेंगे तो सेम मैच नहीं होगा। हाँ एक सूरत है, पहला रंग कटे और वो पूरा रंग काट के सफ़ेद दूध की तरह करे, जैसे पहले दौर में लोग दुपट्टे रंगवाते थे और सरफा करती थी औरतें, इतना पैसा तो नहीं था, पैसा तो शायद था ही मर्दों के पास, औरतों के हाथों में नहीं था असल में, अब औरतों के हाथों में आ गया। मर्द जो कमाते थे उसको इस्तेमाल करके बाकी फिर इन्वेस्ट करते थे या कुछ और करते थे, आज औरत के हाथों में पैसा, उसको पता है मेरे मियाँ के पास इतने और वो मुझे 10,000 का जोड़ा बड़े आराम से दिलवा सकता। चले पुराने दुपट्टों को कई कई बार रंगवाती थी औरतें, आप में से भी कुछ को याद आ जाएगा सोच के, हल्के रंगों पे गहरे करवा लेने, ज़रा 19-20 का फ़र्क है तो वो डायर क्या बोलते थे उसको, ललारी, जो दुपट्टा रंग दो वो रंग देता था। अब कभी आपने ज़िंदगी में कोई दुपट्टा रंगता देखा, उसको जहन में लाइए। पहले मैं कुरान की आयत आपके सामने रख दूं, जो सूरत बकरा में, यानी मैं आपको सिर्फ फातिहा से लेके अनमत अलैहिम सूरत बकरा के शुरू में, लज़ीना युमिनूना बिलगैबी व यकीमूना से लेके मुफ्लिहून तक, और उसके बाद फिर आपको मैं पहले पारे ही की आयत 138 अल बकरा सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह की सिबगा व नहनु लहू आबिदून। अल्लाह का रंग इख्तियार करो क्योंकि इसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा, और हम इसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। हकीकत यह है कि कुरान पढ़ने के बाद बंदे पे सिबगत अल्लाह चढ़ता है, वो अल्लाह के रंग में रंगता है। उसकी पसंद अल्लाह वाली पसंद, उसकी नापसंद अल्लाह की नापसंद। उसको वो अच्छा लगता है जो अल्लाह को अच्छा लगता है, उसको वो अच्छा नहीं लगता जो अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। वो इस तरीके से अल्लाह के रंग में रंगता है कि चलता फिरता कुरान। अल्लाह के नबी के बारे में आपकी ज़ौजा की क्या गवाही है कि कान खुलुका खुल कुरान, उनका अखलाक तो कुरान था। कद अफलहल मोमिनून, आप में से जिन्हें कुरान पढ़ा है आपको पैकेजेस मिले कुरान में। कद अफलहल मोमिनून से लेके 10 आयतों पे देख लीजिए, अलाइका हुमुल वारिसून, जन्नत में जाने वालों की खूबियाँ, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून। सूरत मारिज खोल लीजिए। कुरान ने मुख्तलिफ पेरायों में हर 6-7 पारों के बाद एक पैकेज दिया है कि अपने आप को चेक करो, मैच करो। आज आपके लिए खुशी का दिन है, लेकिन इसके साथ एक जवाबदेही का भी दिन है, एक खुद एहतसाबी का भी दिन है कि मैंने कुरान सिर्फ लोगों के लिए तो नहीं पढ़ा, सिर्फ मुझे शील्ड तो नहीं मिलनी, कोई ताज लेने के लिए तो नहीं मैंने कुरान पढ़ा। और यहाँ ताज मिल जाए, शील्ड मिल जाए, और अगर वहाँ जाकर मैचिंग ना हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। कुरान आपसे मुझसे जो चाहता है वो ये चाहता है कि हम अल्लाह के रंग में रंगे जाए। हम पे ज़िंदगी का रंग है, माशरे का रंग होता है, माहौल का रंग है, स्कूल कॉलेज का रंग था, मीडिया का आज रंग बड़ा तेज़ी से चढ़ने वाला रंग है। अब आपने कुरान खोल लिया, कुरान तो हर दिन आपको कुछ कहेगा, जैसे माँ हर वक्त कुछ कहती रहती है, कुरान भी कहता है, क्योंकि फी ही जिक्र को। अब कुरान की आयतें सुननी मुश्किल हो जाती हैं उसको जिस पे पहले दूसरे रंग चढ़े होते हैं, परेशान है, फिर आंखों से आंसू, नदामत के आंसू, रिग्रेट, मैंने क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को देखो ना, सबसे ज़्यादा जिसको मैं कहती हूँ कि कुरान की महफिल से फ़ायदा उठाने वाला यंग तबका होता है, यंग बच्चियाँ, उनको अपने गुनाह याद आ रहे होते हैं, वो पता नहीं कहाँ भटक रहे थे। और इस उम्र में अर्ज होती है, तो अगर पहले से कोई रंग चढ़ा होता है आप उसको काटते हैं। डायर क्या करता है, उस दुपट्टे को पहले रंग काट में डालता है, फिर भट्टी में पकाता है, फिर उसके बाद वो जब पूरा रंग कटता है, कभी कभी वो रंग काट इतना सख्त होता है कि दुपट्टे में छेद आ जाते थे, क्योंकि वो एक किस्म का तेजाब ही है ना। अच्छा, एक रंग नहीं कटता था, काला, या जिस पे कोई और रंग नहीं आता था ना, कहते थे इसको बड़ी काला करा लो। अब इसको अपने ऊपर लीजिए। कुरान पढ़ा आपने, मैंने, उससे पहले हमारे रंग पिंक थे, मिसाल ले लीजिए, किसी पे थोड़ा रंग चढ़ा हुआ था, किसी पे जरा गाजरी था, कोई शॉकिंग पिंक में था, कोई हो सकता है कि बिल्कुल काले रंग के करीब था। कुरान के बाद आप क्या बने हैं, आपकी जिंदगी में क्या रंग आया है, ये है असल में आपकी कामयाबी। बंदगी का रंग, आज सी का रंग, उठने बैठने में बदल जाता है, इंसान बिल्कुल चेंज हो जाता है। हाँ, वो लोग बिल्कुल नहीं चेंज होते जो सोच के नहीं आते कि हमने कुरान पढ़ के खुद सीखना है, वो तो कुछ और मोटिव रखते हैं, चलो अम्मी अबू कहते हैं पढ़ लो। अगर आप में से किसी ने अपने अम्मी अबू के लिए पढ़ा है तो फिर तो पता नहीं, तर्जमा ही याद हुआ होगा और तो पता भी नहीं है। कुछ मजबूरियों में आते हैं, कुछ स्वभाव के लिए आते हैं, कुछ जन्नत के लिए आते हैं, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुरान उनको बदलता है जिनके दिल में ये तड़प है कि कल जब हम अपने रब के सामने आए तो हमसे राजी हो जाए। दुनिया सारी चलते फिरते लोग के देखो ये है, इसको कहते हैं बामल बच्ची। अब हमारा मसला पता क्या है, हम जाहरी चीज़ों को सब कुछ समझते हैं, जाहरी कब बदलती हैं, जब अंदर बदलता है। सबसे पहले कुरान आपके अंदर को तोड़ता है। अल्लाह के वो बंदे जिनके अंदर अल्लाह की सच्चाई और मोहब्बत आ जाती है, वो दूसरों के लिए हिदायत के मीनारे बन जाते हैं। लोग कहते हैं नेक लोग औलिया कराम वलीउल्लाह और इसी तरह से अल्लाह वाले शायद वो होंगे जो पानी पे चलते हैं, हवा में से गुजर जाते हैं, जो एक टांग पे सारी रात खड़े रहते हैं, जिनको नींद नहीं आती, जिनको भूख नहीं आती, जो कपड़े अच्छे नहीं पहनते, जिनके बालों में से जुएं गिरती हैं, पास हो तो बदबू के भभोके, क्या है जी अल्लाह वाला, हमारे यहाँ नहीं कहते ये पहुंचे हुए हैं, जो गंदा तरक्का हुआ गगड़ा बंदा है उसको कहते हैं अल्लाह वाला, नऊज़ुबिल्लाह। और जो सर से पांव तक लश्क पुश्क बैठा है वो दुनिया के किसी फंक्शन में तैयार होने के लिए पार्लर वाले को 10-20 हज़ार रुपये दे के निकला है। हमारे दिनों में ये तस्वूर कितना आम हो चुका है। याद रखिएगा, सहाबे कराम ने और अल्लाह के नबी ने जो इस्लाम दुनिया को दिया वो अपने अंदर से लेकर बाहर के खूबसूरत रंग की वजह से दिया। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप अपने नेविगेटर या GPS में कोई एड्रेस डालते हैं, चले इधर का एड्रेस था, एड्रेस डालने में गलती हो जाए। मिसाल है कि मैं जहाँ थी वहाँ से जब मैंने इधर के लिए एड्रेस डाला तो वो मुझे 45 मिनट दिखा रहा था ऑलमोस्ट। बिलफर्ज में यही मस्जिद का नाम चूज करती, शहर ना पड़ती तो किसी और शहर में वो मस्जिद होती तो मेरा फासला 4-5 घंटे का दिखा देता और मैं लाशौरी तौर पे उसको कर देती ओके। तो मैंने अभी भी गाड़ी में ही होना था। बड़ी अहम बात है ये आपको बता रही हूँ, कुरान पढ़ते हुए नेविगेटर में मंजिल डेस्टिनेशन ना तारीफ़ें, ना लफ्ज़ आलिम, ना आलिमा, ना डिग्री, कुछ भी ना डालिए, गलत ले जाएगा आपको। कुरान सिर्फ इस सोच के साथ पढ़ना है, और पढ़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आगे भी आपको और पढ़ने का मौका दे कि मैंने अल्लाह की बताई हुई वो सारी अच्छी चीज़ें जो कुरान में आती हैं उस पर अमल करना है और जिससे मना किया उससे रुकना है। उलमा कहते हैं कि सिर्फ सूरत बकरा में 1,000 हुक्म है डूज, अमर कहते हैं अवामिर, और 1,000 नवाही हैं डोंट्स। आप कुरान पढ़ने के बाद से अब तक अपना क्या क्या बदल चुके, क्लिक कीजिए अपना पिछले सालों का, पिछली जिंदगी का रिकॉर्ड चेक कीजिए। कहीं डायरियां पढ़ी होंगी आपकी, कहीं आपकी तस्वीरें रखी होंगी, कहीं कोई वीडियोस होंगी और बहुत कुछ तो आपके साथ रहने वाले बता देंगे। अगर आपके घर वाले ये कहने लग गए हैं ये बच्ची बदल गई है, ये अल्लाह वाली बन गई है। उसके ऊपर एक वाक्य मुझे याद आता है कि एक शख्स किसी जबाग से गुजरे तो वहाँ सेब गिरे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि ज़मीन पर पड़े रहेंगे तो गल जाएंगे, मिट्टी में पड़ा रहे तो वैसे कीड़ा खा जाता है। उठा के इस नियत से कि मैं इसके मालिक को दे दूँ, अभी उठाए थे तो ऊपर से मालिक आ गया, कहने लगा ये आपके सेब हैं मैंने आपके लिए उठाए हैं। उसने कहा नहीं, तुम तो इसको लेके जाने लगे थे, तो मुझे देख लिया तो अब तुम बात बदल रहे हो। उसने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। उन्होंने कहा नहीं देखो, तुमने मेरे सेब चोरी करना चाहे, अब मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ, ले लो नहीं तो आखिरत में पकड़ होगी। अब ये शख्स बहुत नेक थे, इन्होंने कहा कि भाई दुनिया की सजा अच्छी, आखिरत की ना दे। कहा सजा क्या है, तो वो शख्स कहने लगे कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी जो गूंगी भी है, लंगड़ी भी है, अंधी भी है। अब इम्तिहान तो बहुत बड़ा था, लेकिन आखिरत की फिक्र लग जाए तो गम पड़ता है। कहा मैं तैयार हूँ। कहा ठीक है, अपनी बेटी का निकाह इनसे पढ़वाते हैं। अब ये शख्स सोच ये रहा है कि जब मैं अपनी बीवी के पास जाऊंगा तो मैं बात कैसे करूंगा, वो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, ये वो। खैर जब गए और सलाम की तो बड़ी प्यारी आवाज़ में जवाब आ गया। जब देखा तो हसीन और जमील औरत थी, कोई कमी नहीं, नॉर्मल। कहने लगा एक बात तो बताओ, तुम्हारे बाप को गलत कहने की क्या जरूरत थी, ऐसे भी थे वो बता देता तो मैं तुमसे शादी तो कर ही लेता। तो कहने लगी कि असल बात यह है कि मैं भी आम लड़कियों की तरह थी, फिर मैंने कुरान पढ़ा। जब मैंने कुरान पढ़ा ना तो कुरान की एक आयत, बल्कि मैं आप में से पूछूंगी किस सूरत की है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तुम्हारे मुंह से जो लफ्ज निकलता है एक होशियार फरिश्ता उसको फौरन पकड़ लेता है। यानी तुम्हारे मुंह से बोला एक एक लफ्ज गिना जा रहा है, लिखा जा रहा है, किस सूरत में कोई बताएगा आपने से? सूरत काफ। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, 26वें पारे की सूरत है। कहने लगी जब मैंने ये आयत पढ़ी ना कि मेरे मुंह से बोला वह हर लफ्ज लिखा जाएगा, तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया। मैं एक्स्ट्रा बोलती नहीं थी, और जब मैं बोलती नहीं थी तो मेरे घर वालों ने छिड़ के मुझे कह दिया तू तो गूंगी हो गई है। पहले अपने आप से पूछते हैं, क्या इस कुरान ने मुझे गूंगा किया? क्या मेरा बोलना कम हुआ? याद रखिए कि कुरान बंदे की बोलती बंद कर देता है, चुप लग जाती है। और बोलना भी है ना, तो सिर्फ वो बोलना है कि जिस पे अगर हिसाब हो तो पकड़ना हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक को एक औरत मिली थी सहरा में भटकती हुई, जिसके साथ 7 दिन के सफर के दौरान उन्होंने जो चीज समझी वो क्या थी, कि वो सिर्फ कुरान पढ़ती है। अहम बात भी करे ना तो उसका जवाब कुरान की सूरत में देती है। जैसे उन्होंने उसको कहा सलाम अलैकुम रहमतुल्ला, तो जवाब में क्या कहना चाहिए था? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, कहने लगी सलामुन कौलम मिन रब्बि रहीम। जन्नतियों को जो अल्लाह ताला की तरफ से सलाम आएगा उसका जिक्र कर दिया सूरह यासीन की आयत में। कहने लगे वाह बड़ी अच्छी बात है, ज़र एक आलिम ही आलिम की खूबी जान सकता। कहने लगे कि अम्मा तुम किधर से हो, कहाँ से आई? कहने लगी सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। सूरत बनी इसराइल की पहली आयत, 15वें पारे की पहली आयत है, वो पढ़ दी। समझ गए कि ये बैतुल मक़दस के पास से आई हुई है। कहा इधर कैसे आई हो? कहने लगी मैं युद्लिल्लाहु फला हादिया लहू, जिसे अल्लाह रास्ता भटका दे उसको कौन राह दिखाए। मतलब यह है कि वो रास्ता भूली हुई है, अब तो वो और ही मरूब है। जो बात कर रहे हैं वो औरत, उसका जवाब कुरान की आयत में देती है। बिल आखिर जब अपने बच्चों के साथ मिलाई गई काफले में, तो कहने लगे अम्मा अब किधर है तेरे बेटे, कैसे बुलाऊं? तो अम्मा ने वो आयत पढ़ी जिसमें 3 नबियों के जिक्र थे, यूसुफ मूसा और एक और। तो काफले में से 3 चौड़े चकले जवान निकल कर आ गए। इनका आदमी शुक्रिया अदा किया कि हाँ हमारी अम्मा काफले में हमसे बिछड़ गई थी। कहने लगे कि एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ तुम्हारी माँ सिर्फ कुरान पढ़ती है। एक होता है कुरान पढ़ना जो हम पढ़ते हैं तिलावत सवाब दुपट्टा शुपट्टा लेके, एक या के चलते फिरते कुरान। तो कहने लगे आप एक हफ्ते की बात करते हैं, हम 40 साल से अपनी माँ की जुबान से सिर्फ कुरान सुन रहे हैं। आप मुझे बताइए जब उसका नामे अमाल क्यामत के दिन खुलेगा ना, तो उसमें क्या होगा? कुरान तो कुरान पे हिसाब अच्छा होगा कि बुरा? और ये कौन कर सकता है जिसको कुरान आता हो? हम अपने ऊपर लें, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कुरान की कोई आयत हमारे सामने पढ़ी जाए, हम कहीं से सुने हमें समझ आती है? इधर से ही अपने आप को चेक कर लीजिए। अगर मुझे अरबी का कुरान जो मैं नमाज में सुबह पढ़ के आई, जो मैंने अभी नमाज में पढ़ना है, जो मैंने समझे तरावियों में पढ़ना है, या मैंने किसी की तिलावत में सुनना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो मुझे क्या मिलेगा उस नमाज से? आज हमारी नमाज में भूली बिसरी चीज़ें याद आ जाती हैं। क्यों उलामा इकबाल कहते थे कि मेरे वो सजदे भी कजा हुए जो अदा हुए थे नमाज में, कि मैंने जो नमाजें पढ़ी हैं वो भी कोई नहीं पढ़ी गई, मैं जब जमीन पे झुका सजदे में तो आवाज़ आने लगी झुकता तू यहाँ है दिल तेरा कहीं और झुकता। आज बुनियादी तौर पे उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या है? और मैं यहाँ ये भी कहूँगी, आदत मेरी कहने की, कि क्या हम उम्मत मुस्लिमा आज ऐसे हैं कि गैर मुस्लिम हमें देखे तो उनको अल्लाह याद आ जाए? क्या हम चलते फिरते कुरान हैं? क्या हमें कुरान ने बदला? क्या हम साहबा की तरह जहाँ से गुजरे वहाँ दीन इस्लाम फैला गए? कोई मासी हमारे घर एक दफ़ा आ जाए तो कभी गए मैंने तुम्हारा घर नहीं छोड़ना, ऐसी औरत कभी ना मिली? को माली बाबा को चौकीदार को ड्राइवर एक बार हमारे घर आ जाए वो कहेगा मैंने नहीं छोड़ना आपको? हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु गुलाम थे, नस्ली गुलाम नहीं थे, अगवा हो गए बचपन में, पोते हवाते हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा तक पहुँच गए। उस दौर में इंसान बिकते थे, खरीद लिया उन्होंने, और उसके बाद जब नबी सल्लम से शादी हुई तो उनको तोहफे में दे दिया। कुछ अरसे के बाद उनके बाप और चचा उनको ढूंढते हुए आ गए, पता चल गया कि हमारा बच्चा इधर है। कहने लगे मुंह मांगी कीमत दे के हम अपना बच्चा लेने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ये बैठा इससे पूछ लीजिए, जाता है तो चला जाए आपका हक है। तो हजरत जैद ने क्या कहा था कि मुझे ये गुलामी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में मिल रही है ये इतनी प्यारी है कि मैं इसके बदले में आज़ादी को कुर्बान करता? नहीं गए। फिर अल्लाह के नबी ने उनको आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया। ये कहाँ से होता है जी सब कुछ? क्या जिसका एक दफ़ा हमसे वास्ता पड़ जाए फिर वो कभी हमें छोड़ता है? कभी आप ख़वातीन के लिए बोल रही हूँ, मासियाँ टिकती नहीं हैं, झूठ बोलती हैं, इधर काम और शुरू कर दिया, मुझे बताया नहीं, आपको क्यों छोड़ के जाती हैं आपकी मासियाँ? नबी सल्लम को कभी कोई नहीं छोड़ता था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल की उम्र में नबी सल्लम के पास आए थे, उनकी माँ ने दुआएं लेने के लिए अपना बच्चा नबी के पास छोड़ दिया था, लेकिन वो फिर सारी ज़िंदगी नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए कि नबी सल्लम का किरदार बड़ा खूबसूरत था। दुश्मनों को भी जब आपसे वास्ता पड़ जाता था तो वो भी कहते थे कि मोहम्मद, हमने आप में कभी कोई ख़राबी नहीं देखी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन मानते थे, अपनी अमानते रखाते थे। आपने बचपन से किस्सा सुना हुआ है, हिजरत की रात नबी सल्लम वो अमानते जो मशरिकी ने मक्का की थी वो हजरत अली के सभा वाले करके गए। सुना हुआ आपने? कभी एक लम्हे के लिए सोचिए, जिस शख्स की जान लेने के लिए उसके घर का घेराव किया लोगों ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का हिसार कर लिया था ना, अपनी अमानते उसी के पास रखी हुई, क्योंकि यकीन था कि ये सादिक और अमीन है। तो क्या हम वाकई ऐसे हैं कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे? आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के साथ अपने आप को जोड़ेंगे ना, अल्लाह ताला उतना ज़्यादा आपके साथ बेहतरी का मामला करेगा। तो हमेशा खुद इख्तसाबी करें। वो औरत की बात पूरी कर दूं कि फिर कहने लगी कि जब मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि वकर्न फी बुयूतिकुन, कि अपने घरों में करार से बैठो, बिला वजह घर से बाहर ना जाओ। ये तो मर्दों को भी नहीं हुक्म, औरतों को कहाँ। कहने लगी मैंने घर से बाहर ज़्यादा जाना छोड़ दिया, जब मैं घर में बैठी रहती तो लोग मुझे कहते तू लंगड़ी हो गई है। मैं ये लंगड़ी थी। और इसी तरह की बात है, जब कुरान की आयत पढ़ी या दुद नमी नबसारी हिन्ना, कि अपनी नज़रें नीची रखा करो, यानी गैर मर्दों को गैर लड़कों को टुकर टुकर ना देखो। तो मैंने ऊपर देखना ही ज़्यादा लोगों को छोड़ दिया, तो मेरे बाप ने आपका तकवा देखकर मेरी शादी आपसे की है, क्योंकि मेरे जैसी बेटी के लिए वो एक अच्छा शौहर चाहते थे। तो बात ये है, मैं जितनी भी बातें करूँगी, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनके साथ एक दफ़ा वास्ता पड़ जाए बंदा उनको छोड़ना नहीं चाहता, जो झूठ नहीं बोलते, जो हक के गवाह होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, वो दिन जब आएगा तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुत्तकियों का साथ दो, सच्चे लोगों का साथ दो। आज हम कहते सच का दौर ही नहीं, क्या कुरान पढ़ने ने आपको झूठ से रोका? फलानतुल्लाह अलल काज़िबीन कुरान में आया ना, झूठों पे अल्लाह की लानत। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान पढ़ने के दौरान झूठ से तौबा कर ली होगी ना इंशाल्लाह, तो अल्लाह वाली है इंशाल्लाह। हम कहते हैं तस्बीह लंबी करते जाओ, 500 दाने की गले में कुछ और डाल लो, ये वालों अल्लाह वाले वो होते हैं जो पूरे कुरान पे अमल करते करते इस्तकामत के दर्जे पे फायज होते हैं। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ سورۃ حمیم سجدہ کی آیت 30 میں آتا ہے کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جم گئے، استقامت، ان کے اوپر فرشتے اترتے اور جو ان کو کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور تم ہی بلند ہو اور تمہیں جنت ملے گی۔ تو قرآن چاہتا ہے کہ آپ اور میں قرآن کے رنگ میں رنگ جائیں۔ हम अपने आप को एक काम देते हैं, मैं आप सबको एक छोटा सा सोचने का अंदाज दे देती हूँ, एक कुरान ऐसा भी बड़ी है, सात कागज कलम खोल लो। चले माए बहने जिनको नहीं तर्जमा आता ना, अरबी और उर्दू वाला कुरान खोल लिया, एक तर्जमे की आयत, एक दो, एक अरबी एक उर्दू। आप सबको माशाल्लाह कुरान तर्जमे से याद हो चुका होगा, आपके तो क्या ही कहते हैं, आपको जरूरत ही नहीं। सूरत फातिहा से शुरू करें, मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, आप पूरी पढ़ लेंगे ना, इसमें एक भी डोज नहीं है, कुछ नहीं करना आपने इसमें। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह की बातें हैं और आपका तारुफ है। आगे चलिए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, لفظ متقین پہ رک جائیے، تقویٰ والے، بس یہاں آپ نے نا پھر رک جانا ہے. تلاوت سن رہے تھے تو وہاں پوز کر دیں، خود پڑھ رہے تھے تو رکیے، خود سے ایک سوال لکھیے اپنی کاپی میں، کیا میں تقویٰ والی ہوں؟ اب آپ کہیں گے تقویٰ والا کون ہوتا ہے، وہ کیسے؟ بڑی آسان سی تعریف ہے، حالانکہ اس کی 10-12 تعریفیں ہم نے ایک لیکچر تقویٰ کے فوائد میں دی تھی، بہت بنی سیلی بٹی تھی بہت ساری، آج بھی ملے گا وہ لیکچر آپ کو آن لائن پہ. لیکن سمپل تعریف تقویٰ کی کیا ہے؟ حفظ النفس اما یوسم، اپنے نفس کی حفاظت کرنا ہر اس چیز سے جو اس کو گناہگار کر دے. چلیے اپنے آپ سے سوال پوچھیں، کیا میں اپنی آنکھوں کو اب غلط چیزیں دیکھنے سے روکتی ہوں؟ اپنے کانوں کو غلط چیزیں سننے سے روکتی ہوں؟ اپنی زبان سے غلط چیزیں نکلنے سے ڈرتی ہوں؟ بس آگے چلیے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتیں، ویقیمون الصلاۃ، آگے چلتے جائیے، اقیم الصلاۃ کا لفظ جہاں آئے گا رک جائیے، نماز پڑھنی چاہیے، اپنی نمازوں کا جائزہ لیجیے. دیکھیے یہاں ہمیں ساری دنیا تعریفوں کے پل باندھ دے، لیکن اگر ہماری 5 وقت کی نماز پوری نہیں ہوئی اور پھر خشوع، خضوع، خضوع اور حفاظت نہیں ہوئی تو دینے کے دینے پڑ جائیں گے، جال سازی کا مقدمہ لگ جائے گا. تو اللہ والے کون ہوتے ہیں کہ جن کی نمازوں کو دیکھ کر دوسرے نماز کی محبت کریں؟ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ اتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نماز پڑھو تو خود بھی دل کرتا اچھی نماز پڑھے. کبھی ایسا ہوا حرم میں؟ کبھی آپ جائیں کوئی اتنا رو رو کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ بندے کو شرم آتی ہے کہ مجھے کس بات کی جلدی ہے، دیکھو یہ کتنی اچھی پڑھا. نماز پڑھیں گے کچھ لوگ، اتنا لمبا سجدہ، لمبا رکوع، آپ کو اپنی نماز میں شرم آتی ہے. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کی نمازوں کو دیکھ کر دوسروں کا دل نماز پہ جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام جنگوں کے دوران نمازیں پڑھتے تھے اور یہ منظر کفار دیکھتے تھے، دل پہ رعب آ جاتا تھا، اسلام آ جاتا تھا. آج ہم اپنے اوپر لے کر دیکھیں تو کیا ہمارے پاس ہے؟ اس وقت بھی اللہ کے اس کلام کی مجلس میں ہے، اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے 3791، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید سے یہ روایت ہے، کہ جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں. آپ اپنے آپ سے پوچھیے، کیا قرآن کی محفل میں میرا دل لگتا؟ وہاں سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، یہ کیفیت ہوتی ہے؟ الحمدللہ. فلم 3 گھنٹے کی، قرآن کی کلاس کتنی لمبی، نماز کتنی لمبی ہے ہماری؟ آپ اپنی اپنی نمازوں پہ غور کریے، دیکھیے قرآن جب اندر آتا ہے نا تو اس کے بعد دل اللہ سے باتیں کرنے میں لگنے لگتا ہے، جیسے دوستوں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چلیں گے، اور ابھی تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے آپ کا کیا لیول ہے، لیکن میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ ہوتے ہیں کہ جو دن رات اٹھتے بیٹھتے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں. اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے دوستیاں کرتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ پہ ان کا عمل ہوتا ہے. ان کو خاندان بڑا پیارا ہے، رشتے کبھی نہیں ٹوٹیں گے، قطع رحمی نہیں کرنی، سگے بھائی بہن جیسا کوئی رشتہ دنیا میں نہیں ہے، ماں بچوں والا رشتہ کوئی نہیں ہے. لیکن جہاں بات حق اور باطل کی آ جائے گی فیصلے ہو جائیں گے. وہ صرف اس لیے نہیں وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے بھائی کے بچے کی شادی ہے میں کیا کروں، میں پھپھو ہوں، یہ میری بہن کے بچے کی شادی ہے میں خالہ ہوں، میں کیا کروں، میری یہ نند کی بیٹی ہے، میرے سسرال کا معاملہ، نیور. اللہ والا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں اللہ کو، جو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس بات میں خالق کی نافرمانی ہو وہ مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. آپ اپنے آپ سے پوچھیے، کیا آپ قرآن پڑھ کر بھی، میں تو کہتی ہوں دوسروں کو سب کو پیچھے کر دیں، میاں بھی اب لبرل سے ہو گئے، بیگم پہ اتنا روپ نہیں ڈالتے، ساس سسر کو کوئی مانے کون؟ اپنے بچے، آپ سے 18-20-25 سال چھوٹا بچہ आज आपको अल्लाह का हुक्म तोड़ने के लिए मजबूर कर लेता है, सच है कि झूठ? और करता भी कब है जब उसकी खुशी का मौका आता है। गूंगे हो जाते हैं हम, स्टेज पे लाकर माँ बाप को भी साथ बिठा दें क्योंकि बच्चे कमाने लग गए, हालांकि शादी का सारा खर्चा अब्बा जी कर रहे हैं, तो अब्बा जी ही मुजरिम बने बैठे हैं सबको गुनाह दिखाने का। तो ये चीजें देखने की हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जिंदगी भर अल्लाह के रस्ते की शहादत देना और बिल आखिर उनकी अपनी मौत, अल्लाह चाहता है तो शहादत की हो जाती है। तालिब इल्मी की हालत में जो मरता है ना, अल्लाह उसको शहादत की मौत देता है। कभी इस सफर को ख़त्म ना होने दीजिए। आपने जो पढ़ा है ना, अब इसकी बेहतरीन तरीके से काम करने की कैफियत क्या होगी कि आप इसको दोहराएं। और अल्लाह ताला की रहमत है, उसने हमें मौका दिया कि इस साल फिर पाकिस्तान में दौरे कुरान और अल्लाह को मरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोई एक दिन का सफर नहीं है, खाना खा लिया था कल तो बस खत्म नहीं, आज फिर खाना पड़ेगा, कल शावर ले लिया था तो अब नहीं। अब देखिए एक दो दिन के बाद ही हमें हर चीज की भी जरूरत पड़ जाती है ना। कुरान हमारी रूह की गिज़ा है, इसके साथ आपका मुस्तकिल ताल्लुक रहेगा तो इंशाल्लाह फायदा होगा। और जो दोस्तियां अल्लाह के लिए बनती है ना, कुरान क्या कहता है सूरह ज़ुख़रफ़ की आयत 27 में, अल अख़िल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुवन इल्लल मुत्तकीन। यानी वो दिन जब मुत्तकीन को छोड़कर बाकी सब दुश्मन हो जाएंगे। हो सकता है आपकी दोस्तें सहेलियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की, उन्होंने कुरान ना पढ़ा, उनको भी बुलाइए। असल मोहब्बत नेकी की खातर जो की जाती है ना, वो होती है। और याद रखिएगा कि आपका दूसरों को खाना खिलाना अल्लाह के लिए, वयतमी अल्लाह की मोहब्बत में खिलाना मिसकीनम व यतीमम व असीरा, सूरह दाहर की आयत 8 और 9 में आता है। तो सारी बात को अगर मैं समअप कर दूं तो वो ये है कि अल्लाह वाले वो होते हैं जो अल्लाह वाले दिखते हैं। उनको मुंह से नहीं कहना पड़ता कि आप मुसलमान हैं, वैसे मैं मुसलमान हूँ। नमाजी हैं तो उनकी नमाज उनके ऊपर इन्नस सलात तनहा निल फख्शाई वल मुनकर की सूरत में होते हैं। इनके कॉल और फेल में तजाद नहीं होता, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ अकेले में और लोगों के बीच में फ़र्क नहीं होती, इनकी गमों और इनकी खुशियों वाली जिंदगी में फ़र्क होता है। यानी वो बिल्कुल अल्लाह की मर्जी के साथ चलते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुरान का ये सफ़र आपका जितना आगे बढ़ता जाएगा, आप इसको बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेके बैठेंगे। अच्छी दोस्ती, आपकी एज की बच्चियाँ, हज़ारों बच्चियाँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले से जुड़ चुकी हैं और अभी इससे भी ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है। अपनी दोस्तों को साथ लेके इस साल दौरे कुरान कीजिए और फिर आगे जो भी आपको ये लोग पढ़ाएंगे कुरान के साथ जुड़ें, यानी अपनी ज़िंदगी ज़ाया ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह यंग बच्चियों के साथ क्लासेस जो हमारे पास चल रही हैं, उन सब के अंदर मैं देखती हूँ सबसे अच्छा रिस्पॉन्स यंग बच्चियों का, क्योंकि उनको पता है कि हमने अभी ज़िंदगी गुजारनी है और उनकी आंखें गीली होती हैं। कुरान की महफिल और बंदा रोए ना, ये नहीं हो सकता। जब बंदे को अपने अंदर कोई चेंज लाना होता है या अपने आप को वो किसी और रंग में देखता है ना, तो कुछ बदलना होता है। जैसे गूंदते हैं ना आटा, सूखा आटा कोई नहीं खाता ना पकाता, उसको पानी में डाल के गूंदते हैं, चेंजेस आती हैं। और अभी बहुत आएंगी, एक दफ़ा पढ़ा है दोबारा पढ़ेंगे, फिर सीखेंगे, फिर बेहतरी के साथ सीखेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसा बनाए कि जिन घरों में आप जाएँ वो दुआएँ दें आपके उस्तादों को, बस दुआएँ ना दें। मुझे इतना रोना आता है उस वक्त जब कोई सास आके कहती है हम तो जी कुरान पढ़ी बच्ची लाए थे, उसमें तो ये मसला, उसमें जी क्यों भाई खैरियत नहीं, वो तो हाफिजा थी, हाफिजा थी लेकिन उस बेचारी को तर्जमा नहीं आता था और कई तर्जमा पढ़कर भी नहीं बदलते। तो आपने मैंने आज अपने आप से एक वादा करना है कि अल्लाह ताला तू हमें अंदर बाहर से बदल दे, हम जिन घरों में जाएं वहाँ अपनी खुशबू फैलाएं, और अल्लाह ताला आप सबको भी बेहतरीन तरीके से जजा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।